नमस्कार।
हाँ, आज हम अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं।
हाँ, जिसका शीर्षक है ऐसे होगी युग निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति।
बिल्कुल, और इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे पूज्य गुरुदेव युग निर्माण कहते हैं, मतलब समाज का एक बड़ा सकारात्मक बदलाव, उसे असल में हासिल करने के लिए क्या क्या जरूरी है।
हाँ, और देखिए, ये बात सिर्फ धर्म या पूजा पाठ तक ही नहीं रुकती। पूज्य गुरुदेव ने इसमें साहित्य, कला, पैसा, अर्थनीति और यहाँ तक कि राजसत्ता यानी पॉलिटिक्स को भी इस बड़े लक्ष्य से जोड़ा है।
अच्छा, मतलब एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, एक समग्र नजरिया कि भाई समाज के हर पहलू में कैसे सुधार लाया जाए।
तो शुरुआत कहाँ से होती है,
आपने कहा धर्म से।
हाँ, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि पहला प्रयास तो धर्म मंच से ही हुआ, लोक शिक्षण का, खासकर भारतीय समाज, हिंदू समाज को ध्यान में रखकर। पर उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि पूरी दुनिया को एक ही झंडे के नीचे लाना वो शायद मुमकिन नहीं है, एक ख्वाब जैसा है।
सही बात है, दुनिया में इतनी विविधता है।
हाँ, और यहीं उन्होंने वो कुंभ मेले वाला उदाहरण दिया, बड़ा सटीक है।
कुंभ मेला, वो कैसे?
कि जैसे कुंभ में अलग अलग जगहों से, अलग अलग रास्तों से लोग आते हैं पर एक जगह मिलते हैं।
हाँ हाँ,
वैसे ही उनका कहना था कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने विश्वास पर कायम रहते हुए एक कॉमन मानवीय लक्ष्य की तरफ बढ़ें। लक्ष्य हो बेहतर इंसान बनना, दुनिया को बेहतर बनाना, धर्मांतरण नहीं।
अच्छा, मतलब सबकी अच्छी बातें लेना।
हाँ, चाहे वेद हो, कुरान हो या कोई और ग्रंथ, सबके जो उदार, जो ऊंचे मानवीय मूल्य हैं उनको अपनाना, सबको साथ लेकर चलना।
ये तो बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, तो धर्म के बाद और किस पर जोर दिया गुरुदेव ने?
फिर आता है साहित्य, लिटरेचर। पूज्य गुरुदेव मानते थे कि इसका असर बहुत गहरा होता है।
हाँ, होता तो है,
पर वो चिंतित थे कि बाजार में जैसा साहित्य बिक रहा है, सस्ता, सनसनी वाला, वो लोगों की सोच को गिरा रहा है, मनोवृत्तियों को खराब कर रहा है।
ये तो आज भी दिखता है काफी हद तक।
बिल्कुल, तो उन्होंने लेखकों से, पब्लिशर से, पत्रकारों से, पुस्तक बेचने वालों से, मतलब जितने भी लोग साहित्य से जुड़े हैं, सबसे अपील की कि भाई आप लोग अच्छा साहित्य, चरित्र बनाने वाला, ऊंचे विचारों वाला साहित्य बनाओ और फैलाओ।
और अगर वो ना माने तो?
हाँ, यही तो क्रांतिकारी बात है। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा लोग नहीं बदलते तो हमें नई पीढ़ी तैयार करनी होगी, नए लेखक, नए पत्रकार, अपनी प्रकाशन संस्थाएं, ये सब खड़ा करना होगा। मतलब विचारों की लड़ाई में साहित्य के मोर्चे को कमजोर नहीं छोड़ना है।
सही है, साहित्य के बाद फिर कला, आर्ट।
हाँ जी, कला, उसका भी उतना ही, बल्कि शायद और भी सूक्ष्म असर होता है मन पर।
और इसमें पूज्य गुरुदेव ने किस बात पर ध्यान दिलाया?
खासकर चित्रकला में उन्होंने नारी के अश्लील चित्रण की कड़ी निंदा की कि इससे समाज में वासना और गलत भावनाएं फैलती हैं। उनका कहना था कि कला को नारी का सम्मानजनक रूप दिखाना चाहिए, देवी का रूप, माँ का रूप, या फिर मेहनत करती हुई स्त्री, खेत में काम करती हुई, घर संभालती हुई, वो झुर्रियों वाली बूढ़ी माँ, उसमें भी तो सौंदर्य है, गरिमा है।
बिल्कुल है, सच्चा सौंदर्य शायद वही है।
हाँ, ना कि सिर्फ शरीर का प्रदर्शन। और ये बात सिर्फ चित्रकला की नहीं है।
अच्छा, और किस पर लागू होती है
ये? गायकों पर, म्यूजिशियंस पर, मूर्तिकारों पर, एक्टर्स पर, आज के जमाने में कहें तो फिल्म इंडस्ट्री पर भी लागू होती है। पूज्य गुरुदेव ने कलाकार और नट नर्तक में फर्क किया। कलाकार वो जो कला को साधना समझे, योगी जैसा हो, और नट नर्तक वो जिसने कला को बस पैसा कमाने या सस्ती शोहरत का जरिया बना दिया।
और यहाँ भी वही समाधान दिया कि अगर मौजूदा माध्यम नहीं सुधरते
तो उनके समानांतर अपना तंत्र खड़ा करो, अपना संगीत, अपने नाटक, अपनी फिल्में बनाओ जो समाज को अच्छी प्रेरणा दें।
ये तो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लगता है। फिर अर्थव्यवस्था की बात आती है, पैसे की।
हाँ, धन। पूज्य गुरुदेव ने अमीरों को भी सीधी चेतावनी दी है।
क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा कि भविष्य में जरूरत से ज्यादा पैसा जमा करना उतना ही बुरा माना जाएगा जितना आज चोरी डकैती।
अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है।
हाँ, क्योंकि यही फालतू पैसा समाज में जलन, अपराध, नशा, ये सब पैदा करता है।
तो फिर क्या करना चाहिए धन का?
उसे अमानत समझो।
अमानत मतलब ट्रस्टीशिप जैसा?
हाँ बिल्कुल, ये आपकी नहीं, समाज की, ईश्वर की अमानत है। इसे अपने ऐश या बस बच्चों के लिए मत रखो, इसे लगाओ लोक मंगल में, समाज की भलाई में, खासकर सोच बदलने वाले कामों में।
जैसे?
जैसे सस्ता अच्छा साहित्य छापना, अच्छी फिल्में बनाना, शिक्षा स्वास्थ्य में लगाना।
और अगर अमीर लोग ऐसा ना करें तो?
तो फिर आम जनता एक एक रुपया जोड़कर कोऑपरेटिव की तरह पूंजी खड़ी करके ये काम खुद करे, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं ऐसे।
वाह, ये तो आत्मनिर्भरता का भी एक रास्ता हुआ। और आखिर में राजनीति, उसका क्या रोल है?
हाँ, राजनीति, पूज्य गुरुदेव बहुत स्पष्ट थे कि राजनीति को हमेशा धर्म के कंट्रोल में रहना चाहिए।
यहाँ धर्म मतलब कोई मजहब?
नहीं नहीं, मजहब नहीं, धर्म मतलब नैतिकता, सदाचार, लोक कल्याण की भावना, एथिक्स समझिए।
अच्छा, जैसे पुराने जमाने में राजाओं पर ऋषियों का अंकुश होता था, वशिष्ठ या चाणक्य।
बिल्कुल वही भाव, उनका मानना था कि अगर शासक नेक हों, नैतिक हों, तो समाज की बड़ी बड़ी बुराइयां हैं ना, जैसे नशाखोरी है, भ्रष्टाचार है, फिल्मों में फुहड़पन है, ये चाहें तो एक दिन में बंद कर सकते हैं।
पर आज के जमाने में ये कैसे होगा?
उन्होंने सीधा टकराव का रास्ता नहीं बताया, उन्होंने कहा असली ताकत वोटर के हाथ में है।
मतदाता के हाथ में?
हाँ, वोटरों को जागरूक करो, उन्हें सिखाओ कि अपना वोट जाति, पैसा या पहचान देखकर नहीं, बल्कि इस आधार पर दो कि कौन देश के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए ईमानदारी से काम करेगा। सिद्धांत देखो, व्यक्ति नहीं।
ये तो बहुत बुनियादी बात है, पर शायद सबसे जरूरी भी।
बिल्कुल।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें, पूज्य गुरुदेव की ये जो युग निर्माण योजना है,
नहीं,
ये किसी एक चीज पर नहीं टिकी है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो धर्म से लेकर साहित्य, कला, पैसा, राजनीति, सबको एक नैतिक धागे में पिरोकर समाज को बदलने की बात है।
एकदम सही कहा, एक पूरी तस्वीर है ये, और लक्ष्य बहुत ऊंचा है, इंसान के अंदर की अच्छाई को जगाना और इस धरती पर स्वर्ग जैसी शांति और प्रगति लाना। ये सिर्फ बाहर का बदलाव नहीं है, अंदर का, चेतना का बदलाव है।
वाकई ये दृष्टि बहुत व्यापक और गहरी है। ये साफ है कि पूज्य गुरुदेव के अनुसार समाज का असली बदलाव तभी संभव है जब जीवन के हर मैदान में नैतिकता और अच्छाई का झंडा बुलंद हो।
हाँ, और ये सारी चर्चा हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है सोचने के लिए कि आज के समय में हम और आप अपने अपने स्तर पर, चाहे हमारे पास कोई कला हो या थोड़ा धन हो या कोई और प्रभाव हो, उसका समाज की बेहतरी के लिए कैसे, किस रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद यही असली चिंतन का विषय है।
बिल्कुल, इसी विचार के साथ ओम शांति।
ओम शांति।